हरे कृष्णा। दिस लेक्चर ऑन भगवद गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 1 गिवन ऑन 19th April 2016 इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
इस अध्याय का नाम है, इससे पहले जो अध्याय था उसका नाम था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और अब ये जो है इसे गीता का सार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ गीता का सार, एक पॉकेट मिलता है, पॉकेट साइज गीता का सार जेब में रखते हैं लोग या दुकानों पे लगाते हैं, उस पे लिखा होता है गीता का सार, क्या तुम लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओगे, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया भगवद गीता के अंदर। इसका एक्चुअल गीता का सार क्या है वो यहाँ पर इसमें बताया जाएगा। हम धीरे धीरे एक एक श्लोकों पर चर्चा करते करते इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। और अगर हम अपना एक बेसिक इंटेलिजेंस लगाएं तो हम समझ सकते हैं कि वो गीता का सार गलत कैसे है। जैसे उसमें कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अभी किसी का मर्डर हो रहा है ये अच्छा कैसे हो रहा है? हाँ, आगे आने वाले समय में कलयुग बढ़ जाएगा, बोले जो होगा वो अच्छा होगा, अच्छा क्यों होगा? तो ये बात गलत है। तो ये वो गीता का सार सिर्फ ऐसे ही लोगों को प्रभावशाली बनाने के लिए उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया गया उसमें। पर सूक्ष्म रूप में जो असली गीता का सार है वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है। तो इसके जो श्लोक हैं वो चाहे आप कोई भी गीता उठाएं, यही नहीं इस्कॉन का गीता, कोई भी गीता उठाएं श्लोक यही मिलेंगे आपको जो इसमें, लेकिन उसके अनुवाद और तात्पर्य लोगों ने अपने अनुसार बदल दिए हैं। तो इसी के कारण आज इतनी परेशानी है संसार में। तो अब हम गीता का सार का जो गीता का सार है उसका पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। साथ में बोलिए, संजय उवाच तम तथा कृपा अविष्टम अश्रुपूर्णाकुल इक्षणम् विशीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विशीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विशीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। आप लोग दोहराना चाहते हैं कोई? यू वॉन्ट टू ट्राई? अभी तो हम एक अध्याय पूरा पढ़ चुके हैं, आज ट्राई करिए इसको बोलने का श्लोक को संस्कृत। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विशीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। माताजी कोई ट्राई करे, बोलिए माताजी की साइड से कोई ट्राई करिए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुल इक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। इसका अनुवाद अब साथ में दोहराइए। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य दिवंगत श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। बौद्धिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो जो शाश्वत आत्मा है उसके प्रति करुणा हो, उसके मतलब अपनी आत्मा के प्रति हमारी करुणा हो, वो आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञानी रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्थ ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्यान परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। अब हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाते शब्दकान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। श्री राधा कृष्णा पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय और इसका बहुत सुंदर प्रथम श्लोक, इसमें संजय जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। संजय के हृदय में एक टेलीविजन लगा हुआ था जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसके कारण वो एक स्थान पर हस्तिनापुर में बैठकर ही कुरुक्षेत्र का युद्ध देख पा रहे थे। संजय वहां नहीं थे जहां महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र स्थल में चल रहा था। संजय धृतराष्ट्र को बैठ करके डायरेक्ट रिले लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी अपने गुरु वेद व्यास जी के द्वारा। तो वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने भगवत गीता को लिखा है, तो इसलिए वेद व्यास जी जो हैं वो जानते थे, उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी, वो भी इस स्थान को देख पाए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। तो देखा जाए तो कृष्ण भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिया और अर्जुन ने जो कृष्ण को बोला उसे कितने लोगों ने सुना। एक तो संजय ने सुना, क्योंकि एक वेदव्यास जी और एक स्वयं धृतराष्ट्र और एक अर्जुन, तो चार लोग और पांचवें कृष्ण। तो ये पांच लोगों के बीच में ही ये चीजें चल रही हैं। जब वो सेना के बीच में खड़े हैं तो कौरवों की सेना सोच रही है ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन ने बीच में ले जाके रथ को रोक दिया है और कृष्ण से कुछ वार्तालाप कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। भीष्म पितामह भगवान के बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे ये चर्चा क्या चल रही है आपस में। बीच में ले जाके रोक दिया है रथ को, बात क्या कर रहे हैं दोनों आपस में, और कोई बताने वाला नहीं था। तो वो सोच रहे थे भीष्म पितामह, पूरे 45 मिनट जब तक भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वो सोचते रहे कोई एक शब्द तो मुझे सुनाई दे जाए। समझ रहे हैं आप, मतलब भगवद गीता का एक शब्द भी अगर सुनाई दे जाए तो कितना मुख्य है। भीष्म पितामह एक शब्द सुनना चाह रहे थे, हम तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर भावार्थ कथा कीर्तन सब सुन रहे हैं। भीष्म पितामह एक शब्द के लिए ललायत थे, लेकिन वो भी उन्हें सुनाई नहीं दे पाया। भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान का गुणगान, भगवान का नाम, एक शब्द से भी उनको आनंद प्राप्त होता है। जैसे रेगिस्तान का कोई प्यासा व्यक्ति है, जब उसे एक बूंद पानी मिलता है तो उसको तृप्ति महसूस होती है, लेकिन जिसके पास वाटर कूलर लगा हो उसके लिए तो एसी का ठंडा पानी हो, वाटर कूलर का आरओ का ठंडा पानी हो, फिर भी उसको प्यास उसकी बुझती नहीं है। ही नीड समथिंग मोर, उसको लिमका चाहिए, मिरिंडा चाहिए, उसके ऊपर और जाएगा, उसको फ्रूटी चाहिए, आम का सीजन गया नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो उस तरह से वो सोचता रहेगा कुछ मिल जाए नया जिससे मेरी तृप्ति हो। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो वैसा ही है जैसे रेगिस्तान का प्यासा व्यक्ति, एक बूंद कैसा भी गर्म पानी, नॉर्मल पानी कैसा भी मिल जाए लेकिन तृप्ति उसको हो जाती है। तो भगवान के भक्त को भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान का गुण हो या भगवान की लीला, सुनने में बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो कई प्रकार के हैं। जैसे ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं मुक्ति की, आप में से कितने लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता, सॉरी टू से, हाँ भक्त भक्ति चाहता है। मुक्ति पांच प्रकार की होती है। पहली मुक्ति होती है जिसे बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। उस मुक्ति के अंदर हम भगवान से जाकर, भगवान का जो तेज है, जो उनके शरीर से निकलने वाला तेज है, जैसे सूरज से निकलने वाली किरणें, उनकी सनलाइट, उसके अंदर जाकर हम मिश्रित मिल जाते हैं, उसके अंदर मिश्रण हो जाता है हमारा, तो हम भगवान में लीन हो जाते हैं। ये जो भावना है ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण भावना है और इसी को मुक्ति कहते हैं। लेकिन वहां पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल के अंदर गए हैं सामान खरीदने, मॉल होते हैं आजकल, उसमें एंट्री किए और बाहर बहुत लंबी लाइन लगी है, कतार गाड़ियों की, पार्किंग की लाइन, आप खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं और अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे आप, वापिस आ जाएंगे। ऐसे ही जो लोग भगवान से तदात्कार करना चाहते हैं, उनमें मिश्रित हो जाना चाहते हैं, मरने के बाद मिल जाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाना चाहते हैं, जो ऐसी भावना रखते हैं, वो लोग कुछ समय काल तक भगवान के ब्रह्म तेज में जाकर रुकेंगे और उसके समय समाप्त होने के बाद, विचलित होने के बाद पुनः इस पृथ्वी लोक पर वापिस आ जाएंगे एक नया शरीर धारण करके। इसलिए भगवान से तदत्कार करना, भगवान में लीन हो जाना, ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मुक्तियां होती हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा रूप पाने की इच्छा। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसमें भगवान के जैसा ही रूप भक्तों का भी होता है, जय विजय, भगवान के जो भक्त हैं उनके भी चार हाथ होते हैं, विष्णु दूतों के भी चार हाथ होते हैं, लेकिन कृष्ण हाँ, और विष्णु कौन है और विष्णु के भक्त कौन है इसका भेद कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां के जो लोग होते हैं ना वो पहचान जाते हैं। तो उसी तरह से इसको बोलते हैं सा रूप्य मुक्ति। एक होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति मतलब हमें भगवान का लोक मिल जाए, जिस लोक में भगवान रहते हैं उसमें हम भी रहें, ऐसी भावना रखना। और एक होती है साष्टी मुक्ति, जैसा ऐश्वर्य भगवान के पास है, लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, ऐसे ही ऐश्वर्यवान, ऐसे ही माला मुझे मिले, ऐसे ही मुकुट मुझे मिले, ऐसे ही मैं भी भगवान के जैसा बन जाऊं, ये साष्टी मुक्ति होती है। और एक होती है सामिप्य मुक्ति, जहां भगवान रहते हैं उन्हीं के नजदीक मैं भी रह सकूं। ये सारी मुक्तियां हैं अनेकों प्रकार की। लेकिन एक शास्त्र है चैतन्य चरितामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है, उसमें कहते हैं
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, इन तीन चीजों की जो कामना करता है, भुक्ति मतलब भोगने की इच्छा, मुझे इतना धन मिले, इतना धन मिले कि मैं संसार का सबसे बड़ा किंग राजा बन जाऊं और फिर भोगूं इस संसार को, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, फिर मैं अपने रिश्तेदारों को दिखाऊं कि मैं कुछ हूं, फिर मैं अपनी सोसाइटी में दिखाऊं यस मैंने अपनी नॉलेज अपने ज्ञान से लोगों के ऊपर राज करना सीख लिया है। भुक्ति ये भोगने की इच्छा है। मुक्ति जो पांच प्रकार की हमने पढ़ी कि हम भगवान से लीन हो जाए, भगवान के जैसा रूप मिल जाए, भगवान का लोक मिल जाए। मुक्ति सिद्धि, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, अग्निमा महिमा सिद्धि होती हैं, जिन सिद्धियों से हम बहुत लंबे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, और हमारा हाथ इतना बड़ा हो सकता है कि हम ओवरसीज बैंक के लॉकर में हाथ डालकर पैसे निकाल सकते हैं, और ये बात गलत नहीं है, ऐसी सिद्धियां हैं और लोगों ने प्राप्त भी की हैं। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, वो हमेशा अशांत रहेगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त की कोई अभिलाषा नहीं है, वो तो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता चाहता है, इसलिए वो कैसा होता है, शांत, इसलिए वो पीसफुल होता है। और कोई आपको पीसफुल नहीं मिलेगा, आप जितने टेलीविजन पे ज्योतिषाचार्य देखेंगे, जितने बड़े बड़े बाबा जी देखेंगे, वो बड़े अशांत हैं, क्योंकि वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि मैं सही हूं, लेकिन भक्त तो कहता है मैं तो सही नहीं हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, और जब मेरी कोई स्थिति नहीं है तो मेरे को कोई अशांति नहीं है। अशांति तो तब होती है जब मुझे डर होता है मेरी पोजीशन कोई ले ना ले, है कि नहीं। तो भक्त के पास कोई अशांति नहीं होगी, वो तो भगवान का भक्त है, नीचे है भगवान ऊपर है, तो ये हमारे पास फायदा होता है। और मुक्ति वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, भगवान के समीप चला जाएगा, भगवान की रोशनी में मिल जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान के ऊपर रूल करता है, भगवान के ऊपर रूल। अर्जुन कहां बैठे हैं रथ में, ऊपर, भगवान कहां बैठे हैं, नीचे। कभी होता है स्वामी जो है वो नीचे बैठे, मतलब आपके डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जो है वो आपकी गाड़ी चलाए और आप पीछे बैठे हैं, ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो रहा है तो वो भगवान ही कर सकते हैं, और उसको जीतने के लिए भगवान का भक्त बनना पड़ता है। भगवान कहते हैं अहम भक्तापराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, जोर जोर से उच्चारण करते हैं, इसके लिए मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं, वो जो कहते हैं मैं वो करने को तैयार हो जाता हूं, है ना। यहां तक कि मैं अपनी जो कही हुई बात है ना, स्टेटमेंट, हाँ, भगवान जब राम बनकर आते हैं तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन जब वो कृष्ण बनकर आते हैं, स्वयं भगवान आ जाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं भक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा, भक्त ने कह दिया कि तुम्हारी तुम्हारे को भक्ति मिलेगी, मैं कह रहा हूं, तो भगवान चाहे वो पापी क्यों ना हो लेकिन भगवान को देनी पड़ेगी क्योंकि भक्त ने कह दिया है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उन्होंने सिर्फ कह दिया वन हू चैंट हरे कृष्णा विल गेट कृष्णा, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा उसे भगवान प्राप्त होंगे। तो इसलिए चाहे आप पापी भी हो, चाहे आप गलत भी हो, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने कह दिया इसलिए आपको भगवान अपने धाम में प्रवेश कराएंगे। तो हमें क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है भगवान की और भक्त की स्थिति। लेकिन भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, निष्काम भाव से। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है जिसे रूप गोस्वामी ने लिखा, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति के रस का सागर, जहां पर सिर्फ भक्ति 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 और कोई बात ही नहीं है, ना अंगूठियों की बात है, ना उसमें कोई कर्म कांड की बात है, सिर्फ भक्ति की बात है और प्रेम की बात है। उसका जो सागर है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें एक श्लोक आता है प्रथम अध्याय में, उसमें कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ते उत्तमम। उस व्यक्ति की भक्ति उत्तम है जो क्या करता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अभिलाषा ही नहीं है उसकी, सही होगा गलत होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूं। जैसे छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल 3 साल का, उसको पता ही नहीं है
हाँ मेरे को आज शाम को क्या खाने में मिलने वाला है, वो चिंतित होता है, वो अपने टेलीविजन देखता रहता है, जब भूख लगती बस भूखा हूँ, है ना। और माँ बाप अरेंज करते हैं आज शाम को बच्चे को ये खिलाना है, इसकी दवाइयां लानी है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, इसको दवाई देनी है, पोषण देना है, तो माँ बाप की चिंता है। एडमिशन कराना है अच्छे स्कूल में, इसकी सोसाइटी खराब हो रही है, ये पढ़ नहीं रहा है, सब टेंशन किसकी है, बच्चे की कोई अभिलाषा नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है, खुश रहता है। हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हम करता हैं, हम कर रहे हैं। जिस दिन हम कृष्ण पे निर्भर हो जाएंगे ना, बस भूख लगेगी तो तुम्हें देना है, क्योंकि तुमने, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ, हाँ, और मैं अपना काम करूंगा बस, और कोई अभिलाषा नहीं रखूंगा, तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा आनंद का अनुभव होता है। अन्न अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई कर्मकांड नहीं चाहिए मुझे जीवन में। और कहते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वही काम करेंगे जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, जिससे मेरी भक्ति आगे बढ़े। जप करने से आगे बढ़ती है तो मैं जप करूंगा, शास्त्र पढ़ने से आगे बढ़ती है तो मैं रोज गीता पढ़ूंगा या कोई और पुस्तक प्रभुपाद जी की पढ़ूंगा। अगर प्रसाद खाने से मेरी भक्ति आगे बढ़ती है तो मैं प्रसाद ही खाऊंगा, बिना भोग लगा हुआ नहीं खाऊंगा। ऐसे कर्म जो व्यक्ति करता है उसको क्या है, भक्तिर उत्तमा, उसकी भक्ति उत्तम स्थिति की बन जाती है। तो ये काम हमें करना है, बिना किसी अभिलाषा के कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। जैसे भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी, जो ये गीता का सार है, इसके अंदर आत्मा और शरीर को अलग बताया गया है, हम सब एक आत्मा है, शरीर नहीं है, है ना, हम सब एक आत्मा है। तो मान लीजिए कि अगर दूसरों को प्रचार करने की बात तो छोड़ दो, दूसरों को हरि नाम देने की बात भी छोड़ दो, अगर हम मनुष्य शरीर पाकर के सही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए, ये नहीं समझ पाए कि हम शरीर नहीं है, कौन है, आत्मा है, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा उसके लिए कहते हैं कि हम जो पूरा शरीर पाने वाले दो ही पद पशु हैं, पशु जैसे हैं, क्योंकि पशु को पता ही नहीं है कि वो जानवर है। भगवान की एक शक्ति जिसका नाम है आवरण आत्मिका शक्ति, ऐसा आवरण, ऐसी आउटर लेयरिंग बना देती है हमारी सोल आत्मा के ऊपर कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम आत्मा है। आप देखिए, लोग कहते हैं पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार फल मिल रहा है, शरीर तो वहीं जल गया और ये दूसरा शरीर है, तो फिर क्या चीज इसमें आई है, कैरी फॉरवर्ड्स। और आप देखिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले अगर आप सब अपने को इमेजिन करें तो आपका शरीर ऐसा नहीं था जैसा आज है, और आपसे बोला जाए वो शरीर दिखाइए अपना जो 5 वर्ष की उम्र का था, तो आप दिखेंगे कहेंगे वो तो मैं नहीं दिखा सकता, कहां गया वो चला गया है। हमें लगता है वी आर ग्रोइंग, एक्चुअली वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर चेंजिंग अवर बॉडीज। कोमल यौवनम जरा, पहले होते हैं यंग बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, साइकिल में जाती है बॉडी। हमें लगता है कि वी आर ग्रोइंग, एक्चुअली लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, ये बॉडी चेंज हो रही है पूरी, लेकिन इतना ट्रांसमाइग्रेशन इतना सूक्ष्म है, इतना सटल लेवल पे है कि हमें समझ ही नहीं आता कि दे आर बॉडीज आर चेंजिंग, ये शरीर बदल रहे हैं या फिर हम जो है ग्रो कर रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। और जब शरीर समाप्त हो जाता है उसके बाद हम कहां जाते हैं, दूसरे शरीर में। जैसे पुराने वस्त्रों के समाप्त हो जाने पर हम नया वस्त्र धारण करते हैं तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, तो इसका मतलब हम कौन है, शरीर है या आत्मा है। आपसे पूछा जाए आप लोग शर्ट पैंट हैं या आप लोग बॉडी हैं, तो आप कहेंगे बॉडी है, शर्ट पैंट नहीं है। शर्ट पैंट तो निर्जीव है, हैंगर पर टांग दो तो टंगी रहेगी, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ऐसे ही आपका शरीर जो है, जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो क्या बन जाता है, मृत शरीर, डेड बॉडी। क्यों बन जाती है डेड बॉडी, उसमें क्या था जिससे वो चल रही थी, आत्मा। तो आप लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा का बिल्कुल वैसा ही रूप होता है जैसा आपका रूप होता है। ऐसा नहीं होता आत्मा कोई छोटी सी बिंदी होती है, आत्मा कोई रोशनी होती है, ऐसा नहीं है। सोल हैज अ सेम फॉर्म व्हाट यू हैव अ फॉर्म, जैसा आपका शरीर है ऐसा ही आत्मा। क्योंकि जैसे आप दस्ताने पहनते हैं तो दस्ताने जो ऊपर की कवरिंग होती है वो हाथ की उंगलियों के अनुसार बनाया जाता है, ये नहीं होता है कि दस्ताने के अनुसार उंगलियां बनाई जाती हैं। तो शरीर बाद में बनता है, पहले आत्मा होती है। आत्मा जो है उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, लेकिन वो इतनी छोटी है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, मतलब माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा। लेकिन उसका फॉर्म क्या है, दो हाथ, दो पैर, नाक, मुंह, और उसके ऊपर की कवरिंग है ये बॉडी। अब बॉडी जो है वो कवरिंग है। तो जैसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने देखा कोई व्यक्ति डूब रहा था, तो उसके पीछे पीछे गया और पानी में जंप लगा दिया छपाक, और फिर उसके साथ स्विम किया और उसके बाद बाहर आया और लाकर बोला मैंने बचा लिया। तो उसने क्या बचाया था, उसकी जो जैकेट थी उसको निकाल के ले आया। तो क्या उसने सही बचाया? बचाना किसको था? बॉडी को। उसने बचाया किसको? जैकेट को, कपड़े को। ऐसे ही हम भी करते हैं, पूरा जीवन मेहनत करते हैं किसको बचाने के लिए? जैकेट को, ये जो ऊपर की जैकेट है। हैं कौन हम? आत्मा। उसको तो बचाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो हम सब सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड का मतलब समझते हैं? आत्महत्या, आत्मा की हत्या, इसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या वो नहीं होता कि गर्दन लगा के फांसी पे चढ़ गए, वो आत्महत्या नहीं है। वो तो नाम दे दिया गया है शास्त्रों से, उठाकर लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। आत्महत्या ये है कि मैं आत्मा हूं ये भूल गया व्यक्ति, तो आत्महत्या, सुसाइड। हर एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। और श्री प्रभुपाद कहते थे आजकल के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो सब क्या है, आत्महनन के केंद्र है। वहां सिखाया जाता है हाँ, भगवान कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती, सिर्फ साइंस होती है। साइंस, साइंस इज राइट, लेकिन इससे ज्यादा सेटल लेवल की साइंस नहीं है। दिस इज अ ग्रॉस साइंस, ऊपर लेवल की साइंस है। तो आप ये देखिए, जो व्यक्ति ये समझ पाएगा कि हम आत्मा है, तब सही मायने में द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, सच्ची भगवद गीता का मतलब ही यही है, जो व्यक्ति समझ पाए कि हम कौन है, आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तब फिर व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है। अच्छा प्रभु जी, हम आत्मा हैं अगर, तो हम ये शरीर धारण क्यों करते हैं? हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश होने के नाते हमें भगवत धाम में रहना चाहिए। हम आते क्यों हैं यहाँ पे इस संसार में? तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसमें आता है इच्छा द्वेष समुत्थेना सर्गयान्ति परंतपः। परंतप मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन इच्छा, पहले तुम्हारी खुद की इच्छा होती है इच्छा, और फिर दूसरा है द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेना, इन दोनों के कारण हमें शरीर धारण करना पड़ता है। आप सोचेंगे चलो मर गया, खत्म हुआ काम, अब ये मर जाएंगे ना, बस थोड़े साल की और जीवन रह गया, मर गए खत्म। नहीं, खत्म नहीं होता, फिर दूसरे शरीर में, फिर ABCD सीखो, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन लो, फिर नौकरी करो, फिर बच्चे पालो, फिर बड़े हो, फिर बूढ़े हो, फिर मर जाओ, बोले खत्म, नहीं फिर से चालू, फिर ABCD सीखो, इट्स अ साइकिल। आत्मा तो बार बार बॉडी चेंज कर रही है ना, तो हम क्यों मिल रही है बार बार बॉडी? इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छाओं के कारण और द्वेष के कारण। जब ये द्वेष समाप्त हो जाए, डिजायर्स खत्म हो जाए ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान आदि अनावृतम, बस फिर आपको वापस इस संसार में नहीं आना पड़े। तो प्रभु जी कहां चले जाएंगे? हम इस संसार में नहीं आएंगे, तो जाएंगे कहां? तो दो लोक हैं, एक अप्रकट लोक, एक प्रकट, जो दिखता है ये प्रकट है, और अप्रकट इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। कई लोग बोलते हैं कि अगर सारे के सारे भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा, जैसे दिल्ली में हो गया है, ऑड इवन करना पड़ेगा वहां पे। ऐसा नहीं है, वहां पर इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा स्थान है। खाली पृथ्वी जितना नहीं, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है इस संसार में। उन अनेकों अनेकों ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों में जितना कुछ है उससे 3 गुना ज्यादा अप्रकट लोक में है। और एक यूनिवर्स के अंदर 14 प्लैनेट होते हैं, उन 14 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है अर्थ, जिसमें आप रहते हैं, और उस अर्थ प्लैनेट के भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर भी एक कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें आप रहते हैं, उस एशिया में भी अनेकों कंट्रीज हैं, जिसमें एक कंट्री इंडिया, उसमें आप रहते हैं, और उस इंडिया में भी बहुत सारी सिटीज हैं, उसमें से एक सिटी दिल्ली, जिसमें आप रहते हैं, और इस दिल्ली के भी बहुत सारे जोन है, जिसमें से साउथ जोन, जिसमें आप रहते हैं, और साउथ जोन में भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, जिस ब्लॉक में से एम्स ब्लॉक में आप रहते हैं। तो कितने छोटे हैं हम भगवान के आगे, और हम सोचते हैं हम वहां चले जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। अनेकों ब्रह्मांड, सहस्त्र ब्रह्मांड के से भी 3 गुना ज्यादा स्पेस भगवान के धाम में है। सब भी चले जाएंगे ना, कमी नहीं है, पर जाने को तैयार नहीं है। क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छाएं नहीं समाप्त हो रही है, तो हम जाना ही नहीं चाहते, तो भगवान जबरदस्ती रस्सी बांध के थोड़ी खींचेंगे, आ जा आ जा आ जा आ जा, नहीं खींचेंगे, रहो यहीं पर, एंजॉय योर लाइफ। तो इसलिए भगवत ब्रह्म संहिता के अंदर बताते हैं कि यस्त्वा इंद्रा गोपम अथेव इंद्रा महोस्वा कर्म बंधा ननुरूपा फलाभाजनम आतुनोति। कहते हैं इंद्र गोपम, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं इंद्र गोपम, और स्वयं ब्रह्मा गोपम, उसमें छोटा सा कीड़ा भी मरता है और एक बड़ा ब्रह्मा भी मरता है, फर्क होता है उनके इयर्स ऑफ
लाइफ। छोटे कीड़े की जन्म होता है, आप देखिए रात्रि में कीड़ा आता है और वो कीड़ा बिजली का कीड़ा बोलते हैं ना, पतंगा, वो मोमबत्ती की रोशनी से आकर्षित होता है, आता है, कुछ देर खेलता है और फिर आप देखेंगे 4-5 कीड़े और आ जाते हैं, फिर 10-12 हो जाते हैं, फिर 15-20 हो जाते हैं, फिर बहुत सारा ढेर सुबह आपको मरा हुआ मिलता है बारिश के दिनों में। उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 12 घंटे की है। आता है, रोशनी से आकर्षित होता है, उसी में वो प्रोड्यूस भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, इंजॉय भी करता है, और उन्हीं 12 घंटे में उसको लगता है कितना लंबा जीवन है, कब खत्म होगा, इतनी सफरिंग्स है, इतनी टेंशन है इस जीवन में, और हमें लगता है कितने को रात को पैदा हुआ सुबह मर गया। और ब्रह्मा जी, उनकी लाइफ साइकिल के लिए मनुष्य का जीवन बहुत छोटे से कीड़े के समान है। ब्रह्मा जी जीते हैं 43 लाख बिलियन ईयर्स, उसके बाद भी उनको मृत्यु आती है। तो मृत्यु के संसार में मृत्यु आती रहेगी जब तक हम अप्रकट लोक में भगवान धाम में जाने की तैयारी नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सबको भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो हम भगवत धाम जाएंगे उसके लिए किसकी बात माने हम? तो हमारे जीवन में गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनकी बात पर हमको दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए। देयर शुड बी वन रोल मॉडल। जैसे आप कुछ भी करते हैं, कोर्स करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें कोई एक व्यक्ति होता है ना आपको गाइड करने वाला, या फिर आप अपने आप ही गाइड कर लेते हैं अपने आप को। तो धर्म की राह पर आपको गाइड करने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, और उस एक व्यक्ति के साथ में आप उससे क्वेश्चन आंसर अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ करते 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 आगे की क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर एक चीज होनी चाहिए, आपकी फेथ। अगर फेथ होगा तो आप भक्ति में ग्रो करते हैं। जैसे एक बार जीसस क्राइस्ट, जो कि एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वो बाइबल में लिखते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान नहीं हूँ। उन्होंने मना किया लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, वो उनकी गलती है। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट के पास में लोगों की बहुत सारी मुश्किलें होती थी, लोगों को मदद करने का उनका मन होता था। तो एक बार एक व्यक्ति था जो उनको गुरु मानता था, वो आया और कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, जो कुछ भी खाता हूँ वो मुझे लगता नहीं है, और कई बार मुझे वॉमिट हो जाता है, मेरे शरीर से सब कुछ खाना बाहर निकल जाता है, ऐसा क्या है जो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं खा क्यों नहीं पाता हूँ। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक कुछ मत खाना। अब अगर उसको श्रद्धा नहीं होगी बात पे तो वो तो खा लेगा, घर जाकर कहेगा अरे यार ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो बहुत बड़े महान आत्मा हैं, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन उसने बिलीव किया, विश्वास किया और 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। जब 7 दिन निकल गए तो जीसस क्राइस्ट आए, ईसा मसीह, और आकर उन्होंने कहा तुमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। कह रहे नहीं, देखो ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है, ना पानी पिया ना खाया है, कुछ नहीं बस लेटा हुआ है। तो उन्होंने कहा इसके लिए दूध मंगवाया जाए, दूध में चीनी मिलाई और कहा दूध पिलाओ। तो जैसे ही दूध आया ना वो बहुत खुश हो गया, कहा आज मुझे पोषण मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और जैसे ही दूध को पीने लगा, पीने से पहले जीसस क्राइस्ट ने रोक दिया, कहा इसको मुंह मत लगाना। अरे अरे 7 दिन भूखा रखा, आज जब खाना खाने का नंबर आया तो मैं दूध पीने लगा हूं, और उसकी जो खुशबू है ना मीठी मीठी, वो मेरे अंदर से ऐसा क्रेविंग कर रही है कि बस मुझे खाना चाहिए, और बस वो मुंह लगाने से पहले हाथ लगा दिया नहीं, और मुंह के पास उसको रखा और कहा तुम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बस ऐसे ही बैठे रहो। अब उसके लिए तो बड़ी मुश्किल की स्थिति थी कि पी भी नहीं सकता हूं और पीना भी है, भूख लग रही है और उसकी खुशबू भी अंदर जा रही है नाक में से। तो बैठे रहे कुछ 15 से 20 मिनट बाद एक कीड़ा, जिसे टेप वॉर्म कहते हैं, है ना, टेप वॉर्म शरीर से बाहर निकला और फिर आकर उसने दूध को पीने की कोशिश की। तो उन्होंने जैसे ही मुंह से निकला, हाथ से पकड़ के उसे साइड फेंक दिया और कहा अब तुम दूध पी सकते हो। तो बोला मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो ये टेप वॉर्म था ये पैरासाइट था, पैरासाइट समझते हैं, दूसरे के शरीर में रह करके खाना खाने वाला, ये आपके शरीर में रहता था और ये खाना खाता था जो भी आप खाते थे, इसलिए आपको कुछ लगता नहीं था, इसलिए आप भूखे रहते थे, इसलिए आप वीक हो रहे थे। लेकिन 7 दिन जब आप भूखे रहे, इसको कुछ नहीं मिला, तो ये भी सोच रहा था कौन से घर में आके फंस गया हूं मैं। और फिर अब जब फंस गया था उस शरीर में, तो जब इसे खुशबू मिली, आप भी पीना चाह रहे थे तो ये भी पीना चाह रहा था, और उसको पीने के लिए रास्ता ढूंढते ढूंढते ये मुंह तक आ गया, आपके वोकल जो ये 5 पाइप है, इसोफेगस, इधर तक आया। और आने के बाद में जैसे ही पीने लगा, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अब आपका शरीर इससे मुक्त हो चुका है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जो इस शरीर के अंदर बंद है, इसको इस शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, और वो तपस्या किसके कहे अनुसार, किसी एक व्यक्ति के अनुसार, जैसे उस व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट पे श्रद्धा थी। अगर श्रद्धा नहीं है ना तो आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला। आप कहेंगे प्रभु जी श्रद्धा आना बड़ा मुश्किल है। आप मेट्रो ट्रेन में चढ़ते हैं, आप कभी पूछते हैं ड्राइवर से कि अपना लाइसेंस दिखाओ कि तुम्हारी मेट्रो टाइम पर पहुंचती है, तुमने कभी आज तक एक्सीडेंट नहीं किया, टनल के नीचे से, रोड के नीचे से, सबवे के नीचे से गुजारोगे, मैं कैसे अपने जान तुम्हारे हथेली में दे दूं। ऑटो ड्राइवर से बोलते हैं ऑटो चलोगे सफदरजंग, चलोगे ग्रीन पार्क, फट से ऑटो में बैठते हैं और चले जाते हैं। उसे पूछते हैं पहले लाइसेंस दिखाओ, आज तक तुमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, अपनी पुलिस हिस्ट्री दिखाओ, बोलते हैं श्रद्धा। हाँ, नाई के पास जाते हैं, बैठ जाते, कहते बाल काट दो, गला काट दे तो, लेकिन हम उससे कुछ नहीं पूछते। इसको कहते हैं श्रद्धा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों पे जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं उन पर श्रद्धा है। जो व्यक्ति गीता का ज्ञान देते हैं आपको उन पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो भक्ति में प्रगति होती है। तो इसलिए हमें अपने संसार में इस जो भगवद गीता है इसको गीता का सार समझने में लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातों में लगाएं। तो आपको बस ज्यादा समय नहीं लेकर एक और कथा के साथ में समाप्त करेंगे। एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं यस्यात्मा बुद्धि कौन पे त्रिधातु के स्वधृत कलात्र आदिसु भामा इज्जा धृति यत्तीर्थ बुद्धि सलिल ना करिष्यसी ज्ञानेष्वाभिज्ञेषु सा इव गोखरा। इसका अर्थ है यस आत्मा बुद्धि कौन पे त्रिधातु के, तो तीन धातुओं से हमारा शरीर बना है आयुर्वेदा के अनुसार, कफ पित्त और वात। और साइंस जो कहती है एलोपैथिक साइंस जिसमें एम्स जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे सब लोग, इसमें कहते हैं हमारी बॉडी ब्लड स्टूल बोन्स फ्लैश इससे बनी हुई है ना, लेकिन कफ पित्त वात के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर यस आत्मा बुद्धि कौन पे त्रिधातु के, तीन धातु से बनी है कफ पित्त और वात। लेकिन हम इस शरीर को लगाते किस में है, स्वधृत कलात्र आदिसु। कलात्र मतलब होता है पत्नी, पत्नी के साथ संबंध में, पत्नी से उत्पन्न हुए बच्चों के साथ संबंध में, पत्नी के परिवार वालों में, बच्चों के दादी दादा में, मतलब इसी संसार में हम फंस जाते हैं। यह तीर्थ बुद्धि सलिल ना करे शसे, और जो व्यक्ति तीर्थों में जाने के लिए बड़ा वो रहता है ना, हमारे संसार इंडिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं कि चलो किसी तीर्थ स्थान में घूमाएं, गंगा जी नहायाएं, इस तरह से लोगों के मन में बड़ी इच्छा होती है। तो यहाँ पर मना किया गया है यह तीर्थ बुद्धि सलिल ना करे शसी, गंगा में जाकर गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी बॉडी धुल जाएगी, जैसे आप शावर में नहाते हैं ऐसे ही गंगा जी में नहा कर आएंगे, आपकी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। गीता ना सुनने से पहले, इस प्रवचन में ना आने से पहले भी आपने कई बार गंगा स्नान किया होगा, क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में, क्या भक्ति आई? तो फिर स्नान तो शरीर का बाहरी रूप से धुलना हो गया, स्नान हो गया, लेकिन अंदर से स्नान कब होगा? तो कहते हैं ज्ञान इस्व अभिज्ञेषु, उस व्यक्ति के पास जाकर हमें बात करनी चाहिए जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, उस भक्त से हमें ज्ञान लेना चाहिए। अगर हम धामों में भी जाएं, तीर्थों में भी जाएं, तो वहां खाली इसमें ना रहें कि ये मंदिर में दंडवत कर लिया, उस मंदिर में प्रणाम कर लिया, उसके बाद जाकर वहां पर भी साधुओं का संग करना चाहिए, उनसे कथा श्रवण करना चाहिए, उससे फिर हमारी शुद्धि शुरू होती है, श्रवण से, हियरिंग से प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो भागवत कहती है सा इवा गौ खरा, वो आदमी गौ मतलब गाय के समान है, खरा मतलब हाँ गधा, गधा डंकी गधे के समान है। जो व्यक्ति यही काम करता है, एक तो फैमिली लाइफ में बिजी है अपनी में, और तीर्थ यात्राओं में घूमने जाता है अपने परिवार के साथ में, और वहां कोई कथा नहीं सुनता है, और वो भूल गया है कि मेरी जो शरीर है ये तीन धातु से बना हुआ है कफ पित्त वात, इसमें से किसी भी कमी के होने के कारण एक दिन मेरी आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो फंस गया है इसी संसार के अंदर। तो एक बार एक ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी समझते हैं जिसने शादी विवाह नहीं किया, और वो एक महाराज के पास जाया करता था। तो एक महाराज थे, वो उसको कथा सुनाते थे, कहते थे बेटा खूब भजन किया करो। तो उसने भी कहा ठीक है, और कहा शास्त्र पढ़ा करो। कौन सा शास्त्र पढ़ूं? कहा भगवत गीता पढ़ो। तो उसने कहा देखिए महाराज, दिल्ली शहर में गीता पढ़ना मुश्किल है, तो मैं गाँव चला जाता हूँ, गाँव में गीता पढ़ूंगा। कहा कौन से गांव में जाओगे? कहा हमारे घर के पास में एक पहाड़ी जंगल है, वहां मैं नदी के किनारे रहकर गीता पाठ करूंगा। ठीक है चले जाओ। तो बेचारा नदी के किनारे पहाड़ी इलाके में जंगल में एक झोपड़ी बनाई कुटिया और वहां बैठ के गीता पढ़ने लगा। अभी गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही पढ़ा था, दूसरे दिन देखा कि गीता के जो भगवत गीता के इसके पन्ने फटे हुए हैं और कुछ खाए हुए हैं, तो देखा चूहा आकर मेरे पन्ने खा गया है। तो उसे लगा कि अब चूहा जो है अगर पन्ने खा जाएगा तो मैं गीता कैसे पढ़ूंगा, आज चूहे ने एक पेज खाया है कल दो पेज खाएगा, इससे पहले मुझे ज्ञान मेरे अंदर जाए ये तो खत्म कर देगा सारा ज्ञान मेरा, ये पहले खा जाएगा अपना पेट भर लेगा। तो उसने गांव वाले से पूछा क्या करूं, तो गांव वालों ने कहा देखो भाई चूहे को भगाने का सबसे अच्छा इलाज है बिल्ली को लाना, तुम एक बिल्ली ले आओ, बिल्ली आएगी ना म्याओं म्याओं करेगी और ये चूहा वहां से रफा दफा हो जाएगा और तुम आराम से अपनी गीता पढ़ना। कहा ये आइडिया परफेक्ट है और उसने बिल्ली को लाकर रख लिया। अब बिल्ली ने चूहे को तो भगा दिया लेकिन जब वो गीता पढ़ने बैठता तो क्या बोलती, म्याओ भूख लगी है मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तो बस अब ये बड़ा परेशान, हर टाइम म्याओ म्याओ म्याओ, ध्यान ही नहीं लग रहा भजन में, कह रहा सारा लाइफ बेकार हो गई। गांव वालों से पूछा तो गांव वाले बोले देखो भाई बिल्ली बिचारी क्या करे भूखी है, तुम एक गाय रख लो, गाय का दूध निकालना बिल्ली को पिला देना, बिल्ली संतुष्ट होकर चुपचाप बैठी रहेगी और उसके डर से चूहा भी नहीं आएगा, तुम अपना भजन करते रहना। हाँ ये आइडिया परफेक्ट है। वो एक गाय भी ले आया, अब गाय तो आ गई, उसका दूध निकाल के बिल्ली ने पी लिया, बिल्ली ने चूहे को भगा दिया, लेकिन जो गाय थी वो सुबह सुबह रमाने लगती, मुझे भूख लगी है मेरे लिए चारा लाओ। अब चारा कहाँ से आए, कौन खिलाए, कौन उसको नहलाए, उसका उसकी कौन सफाई करे, उसको स्नान कौन करा, उसको चराने कौन ले जाए, ओफो मैं तो गीता पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो समय निकलने लगा, तो लोग बोले गांव के देखो भाई शादी कर लो, ब्रह्मचारी जीवन में क्या रखा है, पत्नी आएगी बेचारी गांव की होगी, गाय की देखभाल करेगी, दूध निकालेगी बिल्ली को देगी, बिल्ली चूहे को भगाएगी, पत्नी अपना रहेगी, तुम अपने भजन करना। कह रहा ये आइडिया परफेक्ट है और उसने विवाह कर लिया। अभी विवाह होने के बाद में पत्नी सारा काम तो करती, लेकिन पत्नी आई है तो पुत्र पुत्री भी आएंगे, तो पुत्र पुत्री भी आ गए, दो पुत्र हो गए उसके और एक पुत्री हो गई, तीन बच्चे, पत्नी, एक गाय, एक बिल्ली और चूहे तो थे ही वहां पे बहुत सारे। तो अब ये बेचारा सोचने लगा, पत्नी कहती कि देखो जी पहले तो हम दो थे, आज तो गाय के लिए सामान चाहिए, तीन बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो आप जाइए कमा कर लाइए, भजन से कुछ नहीं होने वाला है। तो बेचारा जाता नौकरी करने, एक बच्चा था तो 8 घंटे काम करता था, तीन हो गए तो 18 घंटे करने लगा, और रात को थका हुआ आता ना, गीता जो जहां रखी थी वहीं की वहीं रखी रही बहुत सालों तक। तो एक बार महाराज जिन्होंने उसे कहा था कि बेटा ब्रह्मचारी जीवन जीना, भजन करना और अपने आराम से गीता पढ़ना, तो उसने श्रद्धा नहीं रखी अपने गुरु के वाक्य पे, उसने इधर उधर के लोगों से पूछना शुरू किया, गांव के लोगों से, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं हम उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए, जिस व्यक्ति ने आपको आदेश दिया था, उपदेश दिया था, उसी के पास जाना चाहिए था। जब ऐसी परिस्थिति थी उसको जाना चाहिए था अपने गुरु के पास। उसने कहा अपने लोकल एरिया में, जैसे आप यहाँ से सुनते हैं प्रवचन, फिर जाते हैं अपने मंदिरों में, अपने घर परिवार में बताते हैं, वहां जो लोग आपको रिप्लाई देते हैं आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए आप कभी उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके पहुंचने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर महाराज एक बार उस गांव से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे आज से कुछ साल पहले मेरा एक शिष्य था, उसने 20 साल पहले मुझे वादा किया था कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा और गीता शास्त्र भागवत पढ़ूंगा, माला जपूंगा, उसने यही नदी के किनारे कहीं कुटिया बनाई है। तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे, तो बोले महाराज देखिए कहीं ये नाम तो नहीं था, बोले हाँ यही नाम था उसका, चलो चलो ब्रह्मचारी कृष्णदास, चलो इसके घर में चलते हैं। तो दो ब्रह्मचारी गए तो कहा नहीं नहीं महाराज यहाँ कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता, यहाँ तो गाय है, बिल्ली है, चूहे हैं, तीन बच्चे हैं, एक बाबा जी हैं, उनकी पत्नी है, यहाँ कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता, कोई भक्त नहीं रहता। महाराज ने कहा नहीं नहीं नाम तो यही है, चलो चलो अंदर देखते हैं। अंदर देखा तो सच में वो ब्रह्मचारी बैठा था, दो बच्चे इधर गोदी में, एक बच्चा सिर पे था, इधर गाय थी, इधर पत्नी थी नाराज होकर बैठी थी, और इधर बिल्ली थी, और सारे के सारा पूरा परिवार था। महाराज घुसे और पूछा अरे ब्रह्मचारी कृष्णदास ये क्या है? तो ब्रह्मचारी कृष्णदास ने कहा महाराज आपने मुझे कहा था गीता सार, आपने क्या कहा था पढ़ने के लिए, गीता सार, और ये है गीता का संसार। हाँ, ये गीता संसार में मैं फंस गया हूँ। मैंने गीता सार को जिस दिन आया था 20 साल निकल गए। बुक मेरी यथारूप, हमारी किताब का नाम है भगवत गीता यथारूप, जैसे मिली थी वैसे की वैसी ही ऊपर रखी हुई है, मैंने तब से छुई नहीं है। तो हम लोग भी यहाँ से सुनते हैं, वापिस जाते हैं, यथारूप अपने घर में रख देते हैं, बोले अगले मंगलवार को निकालेंगे वहीं पर जाके। तो इसको प्रयास करिए, अपने घर जाकर यथारूप ना रखें, इसको पढ़ें। पढ़ने से आपका जीवन बदलेगा, रखने से जीवन नहीं बदलता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पंचतत्व गौर निताय की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे